नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छात्रों में आपदा के प्रति जागरूकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आपदा के लिए तैयार स्कूल अभियान की शुरुआत की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शीतकालीन इन्फ्लुएंजा के मद्देनजर तैयारियों की आज नई दिल्ली में की समीक्षा। दिल्ली सरकार ने सर्दियों में बेघर लोगों को सर्दी से बचाने के लिए रैन बसेरे दिलाने की समुचित तैयारियां की। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों के उपचुनाव की मतगणना होगी कल। दिल्ली पुलिस ने नवंबर में ऑपरेशन मिलाप के तहत कुल 84 लापता लोगों को मिलाया है उनके परिवार से, और दिल्ली की सुंदर नर्सरी में सरस फूड महोत्सव बना महिला सशक्तिकरण का एक शानदार उदाहरण। और अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छात्रों में आपदा के प्रति जागरूकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज दिल्ली के 6 शैक्षणिक जिलों में आपदा के लिए तैयार स्कूल अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक विद्यालय को आपदाओं के प्रति अधिक जागरूक, अधिक तैयार और अधिक सुरक्षित बनाना है। एक रिपोर्ट।
यह अभियान विद्यालयों में सुरक्षा और आपदा की तैयारियों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और दिल्ली सरकार की एक संयुक्त पहल है। इस अभियान के शुरुआती चरण में 2 दिवसीय कार्यक्रम के माध्यम से 2000 से अधिक विद्यालयों को शामिल किया जाएगा। इस पहल में मॉक ड्रिल, जागरूकता कार्यक्रम, स्कूल आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी, खतरों का मानचित्रण और स्कूल आपदा प्रबंधन समितियों का गठन शामिल है। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि विद्यालयों को किसी भी आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए और लोगों को सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूक होना चाहिए।
लोगों को के बारे में जानकारी होनी चाहिए और ये कैंपेन जो पूरे देश में चलने वाला है, आज उसकी शुरुआत दिल्ली के स्कूलों से हुई है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। डिजास्टर रेडी स्कूल एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है और इस दिशा में दिल्ली बहुत सजगता के साथ काम करेगी अपने सभी स्कूलों में और सभी बच्चों को इसके लिए तैयार करेगी।
अभियान के एक भाग के रूप में भूकंप मॉक ड्रिल भी आयोजित की गई, जिसके दौरान छात्रों और कर्मचारियों ने समन्वित निकासी और एकत्रीकरण प्रक्रियाओं का प्रदर्शन किया। यह देश के सबसे बड़े विद्यालय आधारित आपदा तैयारी कार्यक्रमों में से एक है। सौम्य शरण के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शीतकालीन इन्फ्लुएंजा के मद्देनजर तैयारियों की आज नई दिल्ली में समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय दिल्ली सहित देश भर में मौसमी इन्फ्लुएंजा और श्वसन संबंधी अन्य बीमारियों की स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत श्वसन संबंधी बीमारियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और इस तरह की बीमारियों को असामान्य वृद्धि के तौर पर नहीं देखा गया है। दिल्ली सरकार ने आगामी सर्दियों में बेघर लोगों को सर्दी से बचाने के लिए रैन बसेरे दिलाने की समुचित तैयारियां कर ली हैं। ये योजना विंटर एक्शन प्लान के अंतर्गत चलाई जाएगी। सरकार ने राजधानी के विभिन्न इलाकों में 250 अस्थायी रैन बसेरों में से 204 तैयार कर लिए हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अस्पतालों में मरीजों को सर्दी से बचाव के लिए कंबल आदि की कमी न हो। एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक सरकार ने आंगनबाड़ी और पालना केंद्रों को भी सर्दी से बचाव के लिए पर्याप्त व्यवस्था के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सरकारी इमारतों में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को भी हीटर आदि उपलब्ध कराने को कहा है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली सरकार का हर डिजिटल दस्तावेज पर्यावरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ये बात श्री गुप्ता ने विधानसभा में आयोजित डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कही। इस आयोजन में आगामी शीतकालीन सत्र के लिए दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा पर आईटी विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि प्रश्नोत्तर, विधेयक, प्रस्तुत पत्र, विशेष उल्लेख और विधानसभा से संबंधित और अन्य सभी कार्य अब नेवा डिजिटल मॉड्यूल के माध्यम से संचालित होंगे, जिससे विभागों और विधानसभा के बीच संवाद ज्यादा समयबद्ध, प्रभावी और पूर्णतः उत्तरदायित्वपूर्ण बनेगा। उन्होंने अधिकारियों से संवाद करते हुए इस प्रणाली को अपनाने का आग्रह किया। लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने केंद्रीय सड़क निधि और वर्तमान में विभाग द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं के बारे में एक समीक्षा बैठक की। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा कार्यों की प्रगति की जांच की और साथ ही बेहतर तालमेल के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों के उपचुनाव की मतगणना कल होगी। दिल्ली के राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पिछले महीने की 30 तारीख को हुए उपचुनाव में 12 वार्ड शामिल हैं, जिसके लिए दिल्ली राज्य आयोग ने 10 गणना केंद्र स्थापित किए हैं। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने बताया है कि दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती गणना केंद्रों में कर दी गई है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जवानों को भी ईवीएम की सुरक्षा में लगाया गया है। कल सवेरे 8 बजे से सभी मतगणना केंद्रों पर मतों की गिनती शुरू हो जाएगी। आज राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस है। इस दिन का उद्देश्य हवा, पानी और मिट्टी पर पड़ने वाले प्रदूषण के गंभीर प्रभाव के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। इस अवसर पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सभी नागरिकों को स्वच्छता, पर्यावरण सुरक्षा और प्रकृति संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य मिले। श्री सिंह ने सभी नागरिकों से अपील की कि पर्यावरण संरक्षण को अपनी दैनिक आदतों का हिस्सा बनाएं। महापौर राजा इकबाल सिंह ने आज नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विकास कार्यों और नागरिक सेवाओं की प्रगति पर एक समीक्षा बैठक की। बैठक में श्री सिंह ने जमीनी स्तर पर चल रहे कामों की गति और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली वासियों को स्वच्छ, सुरक्षित और बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है। दिल्ली पुलिस ने पिछले महीने ऑपरेशन मिलाप के तहत कुल 84 लापता लोगों को उनके परिवारों से मिलाया। इनमें 30 बच्चे और 54 वयस्क शामिल हैं। दिल्ली पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने बताया कि 1 जनवरी 2025 से 30 नवंबर 2025 तक कुल 1201 लापता व्यक्तियों को उनके परिवारों से मिलाया गया, जिनमें 399 नाबालिग बच्चे और 802 वयस्क शामिल हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली की सुंदर नर्सरी में सरस फूड महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित ये महोत्सव महिला सशक्तिकरण का एक शानदार उदाहरण है। महोत्सव में आगंतुक सिर्फ खाना ही नहीं चख रहे, बल्कि वो भारत की पाक कला विरासत की विविधता को भी अनुभव कर रहे हैं, जिसे देश भर की ग्रामीण महिलाओं ने अपने कौशल से जीवंत कर दिया है। सुनिए ये रिपोर्ट।
सरस फूड महोत्सव का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, उन्हें स्वरोजगार के अवसर देना और अन्य ग्रामीण महिलाओं को प्रेरित करना है। इस महोत्सव में 25 राज्यों की 500 से ज्यादा पकवान परोसे जा रहे हैं, जो आगंतुकों को भारत की संस्कृति का एक शानदार और स्वादिष्ट भ्रमण करा रही है। इस महोत्सव में लगभग 300 लखपति दीदी और स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं देश के कोने कोने से नई दिल्ली के सुंदर नर्सरी में पहुंची हुई हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए उत्तराखंड की एक प्रदर्शक पूजा तोमर ने बताया कि वो इस वर्ष के महोत्सव में कई स्थानीय पहाड़ी व्यंजन बेच रही हैं। इनमें मांडवे की रोटी और भटकी सहित कई व्यंजन शामिल हैं। उन्होंने सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस महोत्सव से लखपति दीदियों को स्वरोजगार चलाने में मदद मिल रही है।
हम लोगों ने उत्तराखंड का जो पहाड़ी खाना होता है उसको यहाँ पर दिल्ली में लोगों तक पहुँचाने के लिए आए हैं कि अच्छा खाना खिलाएं लोगों को। झंगोरे की खीर, मंडवे की रोटी, भटकी झुलकानी, गोलगप्पे मंडवे के, सारी पहाड़ी चीजें जो हमारे उत्तराखंड की प्रसिद्ध चीजें हैं वो सब हम यहाँ लेकर के आए। हम लोग स्वयं सहायता समूह से लखपति दीदी हैं और सरकार हमें प्रमोट करती है, सहयोग करती है, जिससे हम लोग महिलाएं आगे बढ़ रही हैं।
इस महोत्सव में फूड स्टॉलों के साथ साथ प्राकृतिक व ग्रामीण उत्पादों के स्टॉल भी लगाए गए हैं, जिनके माध्यम से आगंतुक गांवों की आर्थिक व सामाजिक धारा से परिचित हो रहे हैं। ये सरस फूड महोत्सव ग्रामीण भारत की समृद्ध परंपराओं, आत्मनिर्भरता और महिला नेतृत्व वाली आजीविका मॉडल को सामने लाने वाला प्रभावी माध्यम बन गया है। प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि संचार साथी ऐप पूरी तरह से लोकतांत्रिक है। श्री सिंधिया ने कहा कि देश के हर नागरिक की डिजिटल सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि संचार साथी ऐप और पोर्टल है जो नागरिकों को पारदर्शी और उपकरणों के माध्यम से स्वयं को सुरक्षित रखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने बताया कि उपयोगकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार ऐप को डाउनलोड कर इसका फायदा उठा सकते हैं और वो किसी भी समय अपने फोन से इस ऐप को हटा भी सकते हैं।
ये कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है और हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई मैंडेटरी नहीं है, आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते हो, मतलब कि उदाहरण के तौर पे इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हो, तो रजिस्टर मत करो, वो डोरमेंट रहेगा। डिलीट करना है तो डिलीट कर लो, पर हर व्यक्ति को देश में नहीं मालूम कि मुझे फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे चोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐप है। तो हर व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है।
संचार मंत्रालय ने बताया है कि इस ऐप के शुरू होने के बाद से ही 20 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संचार साथी पोर्टल का इस्तेमाल किया और 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे डाउनलोड किया। इस ऐप की मदद से चोरी किए गए 26 लाख मोबाइल फोन्स का पता लगाया गया, जिनमें से 7 लाख 23 हजार फोन नागरिकों को वापस भी किए गए। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने नवंबर में 231 करोड़ आधार प्रमाणीकरण लेन देन दर्ज किए। ये पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में करीब 8.5% अधिक है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि ये आधार के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साथ देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास का भी संकेत है। आधार चेहरा प्रमाणीकरण समाधानों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। नवंबर के दौरान पेंशन भोगियों द्वारा बनाए गए लगभग 60% डिजिटल जीवन प्रमाण पत्रों में आधार चेहरा प्रमाणीकरण का इस्तेमाल किया गया। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक आरोपी को बिहार के सुपौल जिले से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 34 किलोग्राम से ज्यादा मादक पदार्थ जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी और वितरण नेटवर्क की आगे जांच जारी है। राजधानी में आज दिन में मौसम सामान्य रहा, हालांकि शाम के समय हल्की ठंड भी महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार कल सवेरे हल्की धुंध छाए रहने की संभावना है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छात्रों में आपदा के प्रति जागरूकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आपदा के लिए तैयार स्कूल अभियान की शुरुआत की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शीतकालीन इन्फ्लुएंजा के मद्देनजर तैयारियों की आज दिल्ली में की समीक्षा। दिल्ली सरकार ने सर्दियों में बेघर लोगों को सर्दी से बचाने के लिए रैन बसेरे दिलाने की समुचित तैयारियां की। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों के उपचुनाव की मतगणना होगी कल। और दिल्ली की सुंदर नर्सरी में सरस फूड महोत्सव बना महिला सशक्तिकरण का एक शानदार उदाहरण। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।